हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 469। आदित्य के रूम में आते ही सुनैना ने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया। फिर वो एकदम सीरियस होकर उसके सामने बैठती हुई बोली, आदित्य, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन प्लीज तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगे और जो कुछ भी सवाल मैं तुमसे करूंगी तो उसके जवाब में तुम मुझे सब सच बताओगे। उसकी ऐसी बात सुनकर आदित्य थोड़ा सा चौंक गया और वो एकदम आराम से ही बैठा हुआ था तो वो अब एकदम सीधा होकर बैठ गया और उसकी तरफ ही देखने लगा। उसे थोड़ी सी हैरानी हुई और इस बारे में भी सोच रहा है कि आखिर कौन सी बात है जिसे लेकर सुनैना इतना सीरियस होकर बोल रही है। सुनैना की बात सुनकर आखिर आदित्य ने भी उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में एकदम गहराई से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कोई भी बात छिपाऊंगा या फिर तुमसे झूठ बोलूंगा सोना? आदित्य के इस तरह से देखने पर सुनैना के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आने लगी। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, सच कहूं तो कहीं ना कहीं ऐसा है। तुमने भले ही मुझे कोई झूठ ना बोला हो आदि, लेकिन तुम मुझे अभी भी पूरा सच नहीं बताते हो और कितनी बार मैंने तुमसे इस बारे में पूछा भी है, लेकिन आज? इतना बोलते हुए वो अपनी जगह से उठी और वहां पर साइड में एक तरफ जाने लगी। आदित्य को समझ नहीं आया कि ऐसे बात बीच में छोड़कर कहाँ जा रही है, तो आदित्य कन्फ्यूजन से उस तरफ से ही देखने लगा। तभी सुनैना वहां पर एक साइड में गई जहां पर कुछ रखा हुआ था, वो उसे वो अपने हाथ में उठाकर लाई तो आदित्य ने उस तरफ गौर से देखते हुए उसे समझने की कोशिश की कि आखिर वो क्या है जो कि सुनैना उस तरफ ला रही है। अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो पुराना और टूटा हुआ सा फोटो फ्रेम आदित्य के सामने करते हुए सुनैना ने उससे पूछा, क्या है ये? किसकी तस्वीर है बताओ मुझे? तुम्हारी माँ है ना ये? और उनकी तस्वीर पर तुम कभी हार क्यों नहीं चढ़ाते जैसे तुम्हारे पापा की तस्वीर पर है? और तुम कभी अपनी माँ के बारे में बात भी नहीं करते? हमारी शादी के एक साल में तुमने एक बार भी कभी अपनी माँ का जिक्र तक नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं तुमसे पूछा था तब भी तुमने बात हमेशा घुमा दी, लेकिन आज मुझे जानना है। सुनैना के हाथ में वो तस्वीर देखकर आदित्य एक पल के लिए अपनी जगह पर एकदम जम गया और उसे समझ नहीं आया वो उसकी बात और उसके सवाल का क्या जवाब दे। वो उसे फोटो की तरफ गौर से देख रहा है, उसका कांच का फ्रेम टूटा हुआ है और वो तस्वीर भी काफी पुरानी लग रही है। उसे देखकर आदित्य थोड़ा इमोशनल हो गया। सुनैना अभी तक बहुत ही जिद करते हुए ये बात पूछ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आदित्य को इमोशनल होते हुए देखा वो एकदम ही सॉफ्ट हो गई और आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज़ आदि, तुम इस तरह से अफेक्ट मत हो। जो भी बात है प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, तुम्हें पक्का बेटर फील होगा। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर पल, मैं बस तुम्हारे दर्द को बांटना, उसे कम करना नहीं, मैं उसे ख़त्म करना चाहती हूं। काफ़ी वक्त हो गया इन सब चीज़ों को और अब तो शायद मुझे हर्ट भी नहीं होता इस बात से, लेकिन ये औरत तो मेरी माँ है, इस बात से मुझे तकलीफ़ होती है। आदित्य ने एकदम से ही ये बात बोली तो सुनैना की आँखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने जिस तरह से बात की सुनैना को बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि वो अपनी मरी हुई माँ के बारे में बात कर रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी माँ शायद अभी भी जिंदा है। हैरानी से सुनैना का मुंह और आंखें दोनों ही खुली की खुली रह गईं। क्या मतलब? तुम्हारी मॉम? उनकी डेथ नहीं हुई है आदि, वो अभी भी जिंदा? आदित्य बहुत ही नफरत के साथ बीच में ही सुनैना की बात करते हुए बोल पड़ा, मेरी माँ मत कहो उस औरत को, मेरी माँ कहलाने का हक वो खो चुकी है उसी दिन ही जिस दिन उसने मेरे पापा को छोड़ दिया था और चली गई थी किसी और के पास। शादी के इतने सालों बाद भी एक पल के लिए उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना मेरे बारे में, ना मेरे पापा के बारे में और ना ही घर परिवार के बारे में। इतना बोलते हुए आदित्य बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन मायूस से ज़्यादा वो गुस्से में लग रहा है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में लाल भी हो गई हैं और वो सुनैना की तरफ नहीं देख रहा, वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा हुआ है। क्यों हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा का डाइवोर्स? कोई तो वजह होगी, पूरी गलती तुम्हारी माँ की तो, सुनैना बोल ही रही थी तभी आदित्य गुस्से में पीछे मुड़ा और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, सोना प्लीज़, तुम्हें पूरी बात क्या बिल्कुल भी कुछ बात पता नहीं है और ऐसे में अगर तुम उस औरत की तरफदारी में एक शब्द भी बोलोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि गलती चाहे जिसकी भी हो लेकिन सबसे ज़्यादा गलत उसने ही किया है उस औरत ने। आदित्य का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश में सुनैना बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर रही क्योंकि सच में मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इस बारे में सब कुछ जानना है। मैं तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हारी लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, जो कुछ भी तुमसे जुड़ा हुआ हो वो सब। उसकी बात पर आदित्य ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और सुनैना उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर लेकर आई और उसके बगल में बैठती हुई बोली, यहाँ पर बैठो 2 मिनट आराम से और अगर तुम्हें सच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है तो फिर इतना क्यों तकलीफ दे रहे हो खुद को? अगर उन्होंने गलत किया है तो फिर ये सारी तकलीफ परेशानी उन्हें होगी, तुम्हें नहीं। और मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ में देख भी नहीं सकती आदित्य। इतना बोलते हुए आदित्य की आंखों में देखते हुए सुनैना ने उसके गाल पर अपना एक हाथ रखा तो आदित्य ने तुरंत ही उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और बोला, सॉरी, मैंने तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे इस बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, तुम आखिर मेरी वाइफ हो, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। फिर चाहे वो मेरी माँ के बारे में, मेरे कहने का मतलब है उसे औरत के बारे में ही क्यों ना हो जिसने मुझे जन्म दिया। अपनी पलकें झपकाते हुए सुनैना ने हल्का सा मुस्कुराया, बिल्कुल, मैं बस वही जानना चाहती हूँ, आखिर क्या हुआ और कहाँ है अब तुम्हारी माँ, और ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा के बीच, और वो तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं करती क्या कभी? वो चाहे मुझसे जितना भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर ले, मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगा, ना ही उनसे बात करूंगा। मैं उन्हें पूरी तरह अपनी लाइफ से दूर किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा के जाने के बाद वो मेरी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। उनकी वजह से ही पापा की डेथ हुई, अगर वो पापा को छोड़कर ना गई होती तो आज कम से कम मेरे पापा ही मेरे साथ होते। आदित्य फिर से इस तरह इमोशंस और गुस्से के मिले जुले एहसास में भी ये सारी बातें बोल बाहर। सुनैना इस बार बस उसका हाथ पकड़कर एकदम चुप होकर उसे सुन रही है। आदित्य भी आज इससे बिना कुछ छिपाए उसे पूरी बात बता देना चाहता है और उसने उसे शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। स्टार, अक्षत का बंगला। अक्षत और नैना घर वापस आ गए थे। विवान की आज शायद नाइट शिफ्ट है इसलिए वो घर पर नहीं है, तो वो दोनों वहां पर अकेले ही हैं। विवान की अक्षत से कॉल पर बात हुई थी और उसे पता है कि वो लोग आदित्य के घर से वापस आए हैं।
वहीं दूसरी तरफ नैना सुनैना की कही गई बातों के बारे में सोच रही है। भले ही सुनैना ने ऐसे ही मजाक के चलते ये सारी बातें पूछ ली हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कभी नैना के दिमाग में भी आती है कि अगर अक्षत के पेरेंट्स कभी भी तैयार न हुए उन दोनों के रिश्ते के लिए, तो फिर क्या होगा उनके इतने दिनों के रिश्ते का? क्या वो कभी अपने अनजान तक पहुँच पाएगा? क्या पूरी तरह वो दोनों कभी एक दूसरे के हो पाएंगे? ये सारी बातें एक शक का रूप लेकर नैना के दिमाग में लगातार चल रही हैं और वो इसी तरह खोए हुए वहां पर आई और रूम के अंदर आकर बैठ गई। उसने अपनी ड्रेस तक चेंज नहीं की। अक्षत चेंज करके बाहर निकला और उसने देखा कि नैना अभी भी इस पोजीशन में वैसे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई है जैसे कि वो उसे छोड़कर गया था। ये नैना को क्या हो गया है? अभी तक इसने कपड़े भी चेंज नहीं किए और ज्वेलरी तक नहीं निकाली। पता नहीं क्या सोच रही है ऐसा। अपने आप से बात करते हुए अक्षत आगे आया। नैना के नज़दीक आते हुए उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, नैना क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुमने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए। देखो रात काफ़ी हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। अक्षत के इस तरह से कंधे पर हाथ रखकर ये बात बोलने की वजह से नैना एकदम से ही थोड़ा चौंक गई और फिर उसकी तरफ देखकर फिर से कुछ सोचने लगी। उसने अक्षत की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनकी आवाज़ें अक्षत के कही बात से कहीं ज़्यादा तेज़ हैं और वो इसी बारे में सोच रही है। नैना को अपनी तरफ देखते हुए पाकर अक्षत ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? पक्का कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, है ना? बताऊँ मुझे? अक्षत का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए नैना ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अक्षत, हमारी शादी, तुम्हें नहीं लगता काफ़ी टाइम हो गया है हमारे रिलेशन को? और सुनैना ने आज जो कुछ भी कहा उसके बाद से, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, लेकिन कोई भी लड़की होगी उसके मन में इनसिक्योरिटी आ ही जाएगी। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी फैमिली, उन्हें मैं कभी भी पसंद ना आई तुम्हारे लिए, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उसकी आंखों में आंसू एकदम साफ नज़र आ रहे हैं और ये बात बोलते हुए उसकी आवाज़ भी एकदम कांपने लगी थी। अक्षत कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन समझ पा रहा है। अक्षत को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर उसने नैना के पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर देखा और फिर बहुत ही प्यार से उसकी बात का जवाब देता हुआ बोला, नैना तुम्हें पता है सब कुछ है मेरे पास, नाम, पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत, सब कुछ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी थी? प्यार की, लाइफ पार्टनर की, एक ऐसे इंसान की जो मुझे अक्षत कपूर की तरह नहीं एक इंसान की तरह समझे और मुझे प्यार दे, एक ऐसा बेपनाह प्यार जो बेवजह हो, उसके पीछे कोई मतलब, कोई स्वार्थ ना हो। और ये सब कुछ मुझे तुमसे मिला है नैना, सिर्फ तुमसे। तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी पार्टनर, मेरी सुख दुख की साथी, मेरी लाइफ हो। और अपनी लाइफ को कभी कोई छोड़ सकता है क्या? अक्षत की ऐसी मीनिंगफुल बातें सुनकर नैना की आंखों में आंसू भर आए और वो हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए आगे जाकर उसके गले लग गई। अक्षत ने भी कसकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे पर हल्के से चूम लिया। क्रमशः